ओम शांति। मैं आप सबको ले चलती हूं इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के शुरुआत के उन दिनों में जब अभी ये कार्य अंकुरित भी नहीं हुआ था। ये बात 1936 और उससे भी पूर्व की है, जो इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के फाउंडर रहे उनका नाम लखीराज था। और ज्योतिषियों ने बता रखा था उनको कि आपकी आयु 60 वर्षों से ज्यादा नहीं है। बचपन बीता, स्कूल टीचर के बच्चे थे, हैदराबाद सिंध में रहते थे, बहुत कुलीन परिवार के थे, दानी परिवार था। काका आपके एक हाथ से दान करते थे तो दूसरे को पता नहीं लगता था। सस्टेनेंस बहुत अच्छी धार्मिक आध्यात्मिक रूप से रही, लेकिन बाबा की बुद्धि, अभी जब मैं बाबा शब्द कहूंगी ना तो मैं बाबा इनको रेफर करूंगी, तो बाबा माना पिता, हम लोग पिता के रूप से याद करते हैं परमात्मा को भी, इनको हम याद नहीं करते, वो मैं आपको बताने वाली हूं। लेकिन बुजुर्ग होने के नाते पिता रूप से हम इसको बाबा कहते हैं। तो बाबा की बुद्धि बहुत कुशाग्र थी, इंटेलिजेंट। तो जैसे किसी बच्चे के अंदर होता है तो उसकी प्रगति प्रोग्रेस फास्ट होती है, ऐसे ही इन्होंने बिजनेस सीखा। और बिजनेस पहले अनाज का, फिर धीरे धीरे और करते 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 इनका बिजनेस हुआ हीरे जवाहरातों का। पर्सनालिटी करिश्मेटिक थी और गृहस्थी थे, 5 बच्चे थे, भक्ति भाव था, श्री नारायण की भक्ति करते थे और नारायण जी का फोटो सदा अपने पॉकेट में रखते थे, गीता का पाठ प्रतिदिन करते थे, 12 गुरु किए हुए थे और गुरु को अपने घर में ही ठहराते थे और गुरु की इतनी इतनी रिस्पेक्ट और भक्ति करते थे, गुरु का बुलावा सो काल का बुलावा। श्रद्धा बहुत थी, सारे धाम यात्रा में किए हुए थे और जो बिजनेस था वो इतना फ्लरिशिंग था कि भारत की उस समय की जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन राजाओं महाराजाओं के साथ घरेलू संबंध थे, नेपाल के राजा के साथ, अन्य राजाओं के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। तो एक दिन बाबा गुरु आए हुए थे आपके और बाबा डिस्कोर्स सुन रहे थे। सुनते सुनते बाबा को कुछ अनइजीनेस होती है, उठ करके बाबा अपने रूम में जाते हैं। बाबा जब अपने कमरे की ओर जाते हैं तो उनकी जो डॉटर इन लॉ होती हैं, उनका नाम था दादी ब्रज इंदिरा, पहला नाम राधिका था लेकिन बाद में नाम पड़ा अलौकिक नाम ब्रज इंदिरा। तो गुरु लेक्चर दे और बीच में से उठे तो वो डिसरिस्पेक्टफुल हम लोग मानते हैं ना। तो उसने सोचा बाबा ऐसा कभी नहीं करते, जो गुरु लेक्चर दे रहा हो और बाबा उठ जाए। उसने सोचा कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो उनको फॉलो करती हैं। तो बाबा अपने रूम में जाते हैं, पद्मासन में बैठे हुए होते हैं और जैसे ही वो दलहीज में पांव रखती हैं तो वो क्या देखती हैं, सारा रूम रेड रेड है, लाइट से भरपूर, और बाबा की आंखों से अश्रुधारा बह रही, बाबा का फेस रेड, अश्रुधारा बह रही है, ऐसा उनका अनुभव रहा। वे खड़ी रहती हैं, थोड़ी देर के बाद बाबा आंख खोलते हैं तो उनके मुख से निकलता है, वो कौन था, कोई लाइट थी, कोई माइट थी। तो राधिका को तो कुछ समझ में नहीं आता, उसे देखती रहती है। बाबा पुनः गुरु के डिस्कोर्सेस को जैसे सुनते थे सुनते रहे। थोड़े दिनों के बाद बाबा को साक्षात्कार होता है विष्णु चतुर्भुज का। विष्णु जी का चित्र देखा है ना आपने, चार भुजाओं वाले, उसका साक्षात्कार होता है और बाबा को आवाज सुनाई देती है, अहम विष्णु चतुर्भुज तत्त्वम। तो उन्हें आश्चर्य लगता है कि मैं जिसका भक्त और तत्त्वम मैं भी ये हूं, ये कैसे हो सकता है। थोड़ी कंफ्यूज होते हैं, गुरु से पूछते हैं। तो गुरु को जैसे आपसे कोई बात पूछूं आपको पता ना हो तो आपके फेस से पता लग जाएगा ना उनको, इनको इस बात का पता नहीं है। ऐसे ही बाबा ने जब गुरु से पूछा, उन्होंने समझा कि शायद गुरु के आशीर्वाद से कुछ हुआ है। गुरु से पूछा तो गुरु को उस बात का पता नहीं था, तो आंसर नहीं मिला, बाबा शांत हो गए। और फिर कुछ दिनों के बाद तीसरा साक्षात्कार होता है और वो साक्षात्कार होता है ये पुरानी तमो प्रधान कलयुगी दुनिया का विनाश। उस समय 1936 की बात है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स यूज नहीं हुए थे, फर्स्ट टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 39 में वो यूज हुए हैं, उस समय यूज नहीं हुए थे। लेकिन बाबा ने साक्षात्कार में देखा कि ओल्ड एंड एजेड वर्ल्ड गेट्स डिस्ट्रॉयड थ्रू न्यूक्लियर वेपन्स, एटॉमिक वॉर्स, सिविल वॉर्स, नेचुरल कलामिटीज। तो बाबा देख करके घबरा से जाते हैं। उसके बाद तुरंत दूसरा साक्षात्कार होता है जिसमें आकाश से सितारे आते हैं धरती पर, जो ही पड़ते हैं दे गेट चेंज इनटू राजकुमार और राजकुमारियां, और स्वर्ग का दृश्य जैसे बहुत सुंदर ब्यूटीफुल सुकून देने वाला ऐसा दृश्य देखते हैं। और पुनः आवाज आती है कि ऐसी दुनिया बनाने के निमित्त तुम हो। बाबा थोड़ा परेशान होते हैं, मैं साधारण गृहस्थी और ये विश्व बनाने के निमित्त मैं हूं कैसे। फिर धीरे धीरे जैसे वैराग्य वृत्ति शुरू होती है ना, ऐसे बाबा के अंदर वैराग्य वृत्ति आरंभ हो जाती है। और अब वो जो हीरे जवाहरात थे वो सब बाबा को ऐसे लगते हैं जैसे कि पत्थरों। बाबा की दुकानें बॉम्बे, हैदराबाद और हैदराबाद सेन और कलकत्ता में थी। ये नहीं कि वे बाबा की दुकानें थी, लेकिन किसी का नाम बहुत अच्छा होता तो हम उसको यूज करते हैं ना, तो कहीं लखी बाबू की सोने चांदी की दुकान, लखी बाबू की ऐसे ये दुकान, ऐसे अनेकों न्यू मार्केट में कई दुकानें थी, नाम प्रसिद्ध था। फिर धीरे धीरे बाबा को जैसे कि ये होता वैराग वृत्ति, तो बिजनेस से बाबा अपने पार्टनर को कहते हैं कि भाई तुम अपना जो भी हिसाब किताब है कर लो, मेरे को छुट्टी दे दो और आप बिजनेस संभालो। पार्टनर हैरान हो जाता है कि इनके कारण से तो इतना अच्छा बिजनेस है, ये निकल गया तो क्या होगा। लेकिन बाबा को जैसे कि एक धुन लग जाती है कि जो भी हिसाब किताब है पूरा करो, मेरी आयु पूरी हुई, 60 वर्ष का जो बता रखा था ना, तो उनके दिमाग में वो भी था, मेरी आयु पूरी हुई और अब मैं इसमें नहीं जाऊंगा। और अब बाबा बनारस जाते हैं और एक बहुत अच्छी तार भेजते हैं अपने उसको पार्टनर को, अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, अलफ को आई तार अल्लाह की, हुआ रेल का राही। छोड़ करके चल देते हैं, बनारस आते हैं, वहां पर अपने फ्रेंड के घर में रहते हैं, वो घर मैंने देखा है। अब तो उन्होंने उसको छोटा कर दिया, बेच दिया काफी हिस्सा, लेकिन वो ओरिजिनल घर जो था हमने देखा वहां पर, कैसे बाबा चबूतरे थे लॉन में बने हुए। कहते थे उस समय फ्रेंड के बच्चे भी थे, बताते थे कि घंटों बाबा बैठे रहते थे साइलेंस में, घंटों, और दीवारों पर भी ऐसे चित्र बनाते थे। वो उस समय बना हुआ भी था, एक चित्र था सृष्टि चक्र का बना हुआ था। जैसे कि अब वो इस संसार से उनको वैराग आ रहा था, और जैसे परमात्मा अपना कर्तव्य शुरू करते हैं तो भूमिका तैयार करते हैं, तो जैसे ये बैकग्राउंड तैयार कर रहे थे। बस वहां पर बॉम्बे में बाबा रहते हैं, उसके बाद बॉम्बे बनारस में थे, फिर बॉम्बे आते हैं, तो बॉम्बे में जहां रहते हैं सदगुरु निवास बिल्डिंग, जो कि शायद बोरीवली के नजदीक है, बबुलनाथ का जहां मंदिर है, वहां बिल्कुल बाबा की खिड़की से वो मंदिर दिखता था, तो वहां पर बाबा को ये जो चार धाम होते हैं ना उसका साक्षात्कार हो, एक एक वो आते हैं, मैं ये हूं तत् त्वम, मैं ये हूं तत् त्वम, कि तुमको ये बनना है, तुम भी ये हो। अब रोज बाबा गीता पाठी थे, जैसे मैंने बताया गीता पढ़ते थे, तो जैसे अंदर से नए नए अर्थ इमर्ज होने शुरू हुए। अब मैं अगर कुछ पढ़ूंगी, कुछ चीज मेरे को लगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आपको अच्छी लगेगी तो आप क्या करेंगे, औरों के साथ करेंगे, औरों के साथ करेंगे, औरों के साथ करेंगे, करते करते धीरे धीरे वो जैसे कि वहां पर एक सत्संग सा बनना बाबा के घर में शुरू हो गया। और शुरू शुरू में ओम की ध्वनि लगाते थे, ओम ऐसे बोल के ध्वनि लगाते थे, तो नाम पड़ गया उस सत्संग का ओम मंडली। शुरू में नाम पड़ गया ओम मंडली और लोगों का आना जाना शुरू हो गया। उसमें एक स्पेशल बात थी, वो ये कि सिंध था, और सिंध के जो घर के भाई लोग होते थे वो व्यापार के लिए विदेशों में जाते थे, महिलाएं पीछे होती थी, तो महिलाएं वैसे भी सत्संग प्रेमी होती हैं, तो अधिक संख्या में उनका आना शुरू हुआ। अब जब उसमें पढ़ते थे एक एक उसको, तो हर श्लोक जो पढ़ते थे उसका मीनिंग करते थे, तो उसमें आता है हर प्रकार काम और क्रोध तुम्हारे दुश्मन है, कामेशु क्रोधे नरक के द्वार हैं, अहंकार नरक का द्वार है, बुद्धि का नाश करता है, ये सब बातें आती थी। तो वो माताओं बहनों ने और भाई जो आते थे उन्होंने इस ज्ञान को सुना और जीवन में अपनाना शुरू किया। करते 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 संख्या बढ़ती गई बढ़ती गई। तब बाबा ने अपनी सारी चल और अचल संपत्ति एक ट्रस्ट बना करके पांच बहनों का उसको समर्पित कर दी। और बिल्डिंग थी जिसमें चलते थे सारे कोर्स, ये डिस्कोर्सेस चलते थे, वहां पर कईयों को उस समय, अब क्या ये परमात्मा का कार्य को इंसान करने, ये बात मैं आपको स्पष्ट क्लियर बताना चाहूंगी कि इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में हम पर्सनालिटी को महत्व नहीं देते। बेशक ब्रह्मा जिनका नाम पड़ा, फाउंडिंग फादर, ना हम इन्हें गुरु मानते हैं, ना हम इनकी पूजा करते हैं, और न ही उस प्रकार से जो महत्व दिया जाता है वो कोई हम करते हैं। ये कार्य परमात्मा का है और परमात्मा को हम लोग निराकार ज्योति बिंदु मानते हैं। जो परिचय परमात्मा ने स्वयं इनके मुखारविंद के द्वारा दिया, जिसे लोगों ने प्रैक्टिकल सुना, मैं अव्यक्त मूरत हूं, मैं निराकार हूं, ज्योति स्वरूप हूं, मैं जन्म पुनर्जन्म के चक्र से न्यारा हूं, मैं नस नाड़ी के बंधन में नहीं आता, सबका मात पिता हूं, मेरे मात पिता नहीं है, सारा परिचय इनके माध्यम से, जैसे कोई बोलता है तो इनके माध्यम से बोलते हैं। बाबा तो नारायण के भक्त थे, परंतु अब जो ज्ञान मिल रहा था वो परमात्मा शिव स्वयं, शिव का अर्थ है कल्याणकारी, शिव का अर्थ है बिंदु और शिव का अर्थ है बीज रूप। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन हुई उसमें जब कभी वो लोग जीरो बोलते थे तो कहते थे कहो शिव, शिव बोलते, तो शिव माना बिंदु। निराकार ज्योति बिंदु इस माध्यम से बोल रहे थे। अब क्योंकि माताओं बहनों का वहां आना हुआ, पुरुष लोग जो थे बिजनेस के कारण विदेश में, और यहां पर जब आए तो यहां पर आए तो देखा उनकी माताएं बहनें तो सारी एकदम ऐसे ज्ञान और ये चर्चा करने वाली बन गई, तो प्रसिद्ध हो गया कि ये जो है जादू करता है। ऐसा तो कभी होता नहीं कोई काम क्रोध को दुश्मन मानना शुरू कर दे, तो ये जरूर इसने जादू किया। अब वो जादू की बात ऐसी फैली जो कि सारे सिंध में प्रसिद्ध, और वो फिर हवा यहां पर भी आई। मैं आपको हंसी की बात सुनाती हूं। कहते हैं एक बार इस बहुत प्रसिद्ध ब्रह्मा कुमारियों के पास नहीं जाना, वो जादू करती हैं, उनकी आंखों में जादू होता है, उनका सुरमा कभी नहीं लगाना। सब लोग जो सुनते, हमारी अपनी फैमिली ने सुन रखा था, सुनते हैं तो उनको डर लगता है। अब सोचने की बात है, ब्रह्मा कुमारी जो है वो समाज के बीच में बैठी हैं, और जादू ऐसे हो जाए संभव है? नहीं, ये कलकत्ता से जादू सीख के आया था, आदि आदि बात है, लोगों की गलत फहमियां। लेकिन वो जादू तो नहीं होता, ज्ञान का जादू अवश्य होता है। उस वक्त इतने लोग, 350 लोग रहते थे, और 5 मई 1950 को हैदराबाद सिंध से ये मुख्यालय माउंट आबू बना। और जो शिक्षाएं हैं वो ये है कि हमें घर गृहस्थ में रह करके अपने जीवन को ऊंचा बनाना है, गृहस्थ को आश्रम बनाइए, बैलेंस रखिए, ऑर्गेनाइजेशन में हम कभी नहीं कहते आप त्यागी वैरागी बनो, सफेद वस्त्र पहनो, गेरवे वस्त्र पहनो, नहीं। ये अपने देश की संस्कृति नहीं है। अपने देश की संस्कृति देवी देवताओं की है। बढ़िया से बढ़िया ड्रेस पहनो, बढ़िया से बढ़िया भोजन करो, बढ़िया से बढ़िया घूमो, लेकिन साथ में दूसरा एस्पेक्ट जो है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का, उसका बैलेंस रखो। जिसके लिए हमारे पास हर सेंटर पर रेगुलर रूप से मॉर्निंग और इवनिंग क्लासेस चलते हैं। क्लासेस में हम लोग इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। क्रोध को कैसे जीतना है, काम को कैसे जीतना है, लोभ को कैसे जीतना है, जो हम सदियों से सुनते आए, लेकिन उसको हम प्रैक्टिकल कैसे करें, उसके लिए ये हमारे डेली डिस्कोर्सेस चलते हैं हर जगह। वी हैव नाउ 8,500 सेंटर्स इन 137 कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की इकोसॉक और यूनिसेफ में कंसल्टेटिव एनजीओ मेंबर हैं और पेपर्स भी एडवाइजरी रूप से हम लोग प्रेजेंट करते हैं यूएन में। डब्ल्यूएचओ के साथ भी एसोसिएटेड हैं, यूनेस्को के साथ भी एसोसिएटेड हैं। और जो शिक्षाएं हैं उनमें एक ये, दूसरा आप आत्मा हैं, ये शरीर नहीं। आत्मा के नाते से आप एक दूसरे को देखोगे तो अपनी इनर ब्यूटी का विकास करोगे। बॉडी कॉन्शियसनेस से देखोगे तो आपस में डिविजन इत्यादि ये सब होंगे और लड़ाई झगड़े देह अभिमान के कारण है। देही अभिमानी सोल कॉन्शियस स्टेट से यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मैन एंड फादरहुड ऑफ गॉड हम साकार कर सकते हैं, वासुदेव कुटुंबकम। तीसरी चीज, चैरिटी बिगिंस एट होम। जब तक मैंने अपने घर में दीपक नहीं जगाया, मैं बाहर क्या जगाऊंगी। तो यहां पर हम लोग सीखते हैं, जो भी हमारे पास आते हैं, अगर बहन आती है तो हम उनको कहते हैं कि आप अपने साथ अपने साथी को लेके आइए, अपने युगल को लेके आइए। और अगर भाई आते हैं तो हम उनको कहते हैं आप अपनी मिसेस को साथ लेकर के आए, क्योंकि जब दोनों की थिंकिंग एक जैसी होगी तब आपकी लाइफ में परिवर्तन। नहीं तो एक की कुछ हो दूसरे की कुछ हो तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। चौथी बात, बाबा ने सिखाया मांगने से मरना भला। बच्चे कभी भी आपका हाथ ऐसा नहीं होना चाहिए, सदा आपका हाथ ऐसा होना चाहिए। आपने 5 रुपए किसी को देने हो आपका हाथ ऐसे होता है, 500 रुपए लेने हो तो ऐसा होता है। देने में सुख है, लेने में बोझ है। ये ईश्वरी विश्वविद्यालय का नियम है। फिर आप पूछेंगे बहन जी फिर इतना सारा खर्चा कैसे चलता है। कुछ लोग सोचते हैं शायद इनको अमेरिका से पैसा आता। मैं आपको स्पष्ट बता देती हूँ कि ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो कि अमेरिका से इधर उधर से पैसा है। क्यों, हम भारत वाले कम है? नहीं, यहां जो भाई बहने आते हैं, यस बिल्कुल, और इसकी जो संभाल है, एक तो पहली बात, जब ज्ञान हमें मिल जाता है, जीवन में परिवर्तन आता है, तो मैं आपको बताती हूं हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाती है। सम्प्चुअसनेस, सेटिस्फैक्शन आपको अपने आप अंदर अंदर आता है। एंड वेन यू आर इंटरनली सेटिस्फाइड तो आपका बाहर से अपने आप को संतुष्ट करने की जितनी वो खर्चे होते हैं वो आपके बच जाते हैं। एक भी भाई और बहन जो यहां आता है फजूल खर्ची नहीं करता। नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग, नो इस तरीके की बाहर फालतू खर्च करे नहीं। तो नेचुरली क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी बन जाती है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होती है तो जिस ज्ञान से उनका जीवन बदलता है तो वो सोचते हैं क्यों नहीं हम इस चीज को, इस धन को जो मेरे पास बचा, मैं क्यों नहीं इस धन को उस ईश्वरीय सेवा में लगाऊं। इसलिए भाई बहन जो यहां से रेगुलर बेनिफिशियरीज हैं वे संभाल करते हैं। हरे जैसे परिवार में होता है, परिवार में कोई भी बात होती है तो मिलजुल के करते हैं, ऐसे ही हम लोग कोई मेंबर नहीं बनाते, कोई और प्रकार की नहीं, परंतु फैमिली मेंबर जरूर बनाते हैं। सब फैमिली मेंबर, और फैमिली मेंबर अपने आप जिम्मेवारी समझ करके अपना काम करते हैं। ना हम लेते हैं, ना हम आपको देते हैं, ये परमात्मा का यज्ञ है, उसको ही, उसके ही नाम से आप देते हैं, उसके ही नाम से आप लेते हैं, ठीक है। उसकी पालना है, ना कि मनुष्य की। कोई भी मनुष्य, कोई भी बहन, कोई भी भाई हमारे यहां इस तरीके का नहीं होगा जो आपको कहा आपको इतना करना है। कई बार रजिस्ट्रेशन पर हमसे पूछते हैं इसकी फीस कितनी है, आप लोगों ने भी पूछा होगा, आंसर आपको मिला होगा। कोई कहता है इस चीज के लिए मुझे कितना करना है, नहीं, भगवान का है, भगवान दाता है। अगर कोई 5 करता है तो कोई 50 भी करता है, फर्क होता है ना, इस तरीके से सारा चलता है। दूसरी बात, हमारे पास आने वाले जितने भाई बहन हैं, 98% ऑफ देम आर वर्किंग, 98% लोग वर्किंग है, हमारे जैसे तो केवल 2%, और वो चाहिए क्योंकि सेवा में रनिंग के लिए तो चाहिए ना, बाकी 98 वर्किंग है, तो सब अपने आप सेल्फ फाइनेंसिंग रहता है। इसी रीत से हमारे पास जो भी आती है कन्याएं, पहले ही अपने माँ बाप के साथ रेगुलर स्टडी सेंटर्स पर करती हैं, और अगर किसी का मन करे मैं वापस चली जाऊं, कोई बंधन नहीं है। आज मेरा मन करे मैं वापस चली जाऊं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। वॉलंटरिली मैं यहां आई हूं और मैं जाना चाहती हूं, I'm allowed। हम पेरेंट्स के साथ और फैमिली के साथ रिश्ता तोड़वाते नहीं है, क्यों, फैमिली ने क्या बिगाड़ा, पाल पोस के बड़ा किया, लायक बनाया है, हम उनके साथ रिश्ता क्यों तोड़े, नहीं, रिश्ता नहीं तोड़ते, वो भी आते जाते हैं और हम लोग भी आते जाते हैं। इस प्रकार स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। मैं आपको कुछ कहूं तो एक उंगली आपकी तरफ है, बाकी 4 तो मेरी तरफ है ना, और यहां पर प्रैक्टिकल लाइफ को हम लोग महत्व देते हैं। थियोरी जो भी कुछ सुनते हैं उसको आपने प्रैक्टिकल में लाना। इसलिए कभी कभी हम लोगों से लोग कहते हैं कि फलां के पास तो इतने सारे लोग जाते हैं, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, आपके पास तो बहुत थोड़े आते हैं। ना, बिल्कुल बहुत थोड़े आएंगे, क्योंकि क्वालिटी लाइफ बनाने के लिए आपको अपने ऊपर मेहनत बहुत करनी पड़ती है। यहां रोज आपसे पूछा जाएगा तो आपको रोज अटेंशन देना पड़ेगा। इस प्रकार वर्तमान समय हेडक्वार्टर माउंट आबू है, और जैसा मैंने बताया 137 कंट्रीज में है। रिट्रीट सेंटर हमारा नॉर्दर्न इंडिया का ये सबसे बड़ा कैंपस है माउंट आबू के बाद, और रेगुलर रूप से रिट्रीट्स यहाँ चलती रहती हैं, कॉन्फ्रेंसेस जैसे ये चलिए से अन्य भी चलती हैं, और इस प्रकार हम लोग सब मिलजुल करके सेवा में उपस्थित हैं। अपने जर्नल्स हैं जिनसे कि सेवाएं होती हैं, प्यूरिटी न्यूज मैगजीन है जो कि विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा न्यूज मैगजीन है, ऐसे ही ज्ञान अमृत है, वर्ल्ड रिन्यूअल है, पब्लिकेशंस हैं, बहुत सारी चीजें। तो इस प्रकार से ये ईश्वरी विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है, और हम बाहर से भी डोनेशंस नहीं लेते, ये भी मैं आपको बता दूं। अमेरिका वगैरह तो बात छोड़ दीजिए, वैसे ही कोई कहे मैं आकर के आपको इतना देना चाहता हूं, कहते नहीं, पहले आप सेवा लीजिए, पहले आपकी लाइफ में परिवर्तन आए, उसके बाद आप कुछ करिएगा, ये चीज, ठीक है, ओके।